ओम शांति। आज हम एक विशेष बात पर चर्चा करें, एक धारणा की बात और एक बाबा ने जो हम सबको बहुत अच्छा काम दिया है इस वर्ष के लिए, उस पर कुछ चर्चा। वो तो पुण्य जमा करने की पॉइंट आपको याद होगी, पुण्य कट जाते हैं किससे, मैंपन से। याद है ना बाबा के शब्द कि जितना खाता तुम समझते हो कि जमा किया हुआ है, बाप के खाते में उतना नहीं है। तो ये बात बहुत ही अच्छी तरह सोचने की है कि हम सेवा कर रहे हो, पुण्य जमा कर रहे हो भिन्न भिन्न रूप से, और वो कट न रहा हो। एक इस पर चर्चा। दूसरा, हम सब के लिए एक छोटी सी धारणा है लेकिन बहुत काम की, बिल्कुल छोटी और बहुत काम की, हमारे संगठन में व्यवहारिक पुरुषार्थ के लिए, प्रभाव के लिए, पर्सनालिटी के लिए, और वो है बोल। हमारे बोल बहुत अच्छे हों। अच्छे में सब कुछ आ जाता है, केवल मीठे नहीं, केवल धीरे नहीं, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, ये तो एक प्रारंभिक चीज है, लेकिन हमारे बोल दूसरों को आकर्षित करे, हमारे बोल में एक अलौकिक प्रभाव आ जाए, इसके लिए क्या जरूरी है? बोल के पीछे क्या काम करती है मनुष्य की? क्या काम करती है बोल के पीछे? कई बार आप किसी को ठीक ठीक भी बोल रहे होंगे पर उसे अच्छा नहीं लगेगा, होता है ना ऐसे। भावना, बोल के पीछे मनुष्य की भावना क्या है? और दूसरी चीज कि हमने अपने मन में दूसरों के लिए एक निश्चित भावना न बना ली हो जो बदले ही नहीं। हमने मान लिया हो ये फलानी आत्मा तो ऐसी है, और मानते ही आ रहे हो 10 साल से, हमने अपनी भावना बदली ना हो, ये ठीक है या गलत? ठीक है या गलत, बोलो, गलत हो गया ना। तो जैसे हर आत्मा बदल रही है, हमें बाबा की उस बात पे सोचना चाहिए। अभी मुरली चली है बाबा की कि एक सेकंड में जो पार्ट प्ले हो गया वो दूसरे में नहीं होगा। 84 जन्मों में अभी मुरली थी ना, 84 तुम्हारे चित्र होंगे, फीचर्स होंगे, एक दूसरे से नहीं मिलेगा और एक आत्मा का दूसरे आत्मा से नहीं मिलेगा। सब आत्माओं के हर जन्म के अलग अलग और हमारे भी अलग अलग। तो जब एक सेकंड का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता, वो बदलता जाता है, तो हम अपनी भावनाओं को पहले वाली क्यों रखें? सब बदल रहा है ना। एक इस बात की हमें विशेष चेकिंग करनी चाहिए कि संगठन में आपस में रहते हुए हम एक दूसरे के लिए भावनाओं को गलत न रख बैठे हों चित्त में, क्योंकि आपस में रहते हैं, आपस में रहने के कारण एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं कि भाई सवेरे हमारे कमरे में तो 5 थे, ये एक व्यक्ति तो कभी योग में जाता ही नहीं, सदा ही सोया हुआ है। एक बहन जी की बहुत अच्छी बात हमने सुनी, तो बहुत अच्छी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी बहुत अच्छी, लेकिन योग में सदा ही कहां रहती है? निद्रा लोक में रहती है। तो बहुत उमंग है उसको, तो सुना रही थी, हमने वहां भी एक ग्रुप बनाया छोटा सा बहनों का मधुबन में, उसमें वो भी है। तो सकाश देने की बात में कहा उसने कि भाई नीचे ही अगर पावरफुल न हो तो सकाश कैसे जाएगी। नीचे पावरफुल का अर्थ था कि उनके कमरे में ही लोग उठते नहीं सवेरे योग करने के लिए। तो उसके जाने के बाद एक दूसरी उसकी साथी बहन ने हमें सुनाया कि बहन जी क्या करती है कि 2:30 बजे सवेरे उठती है, उठते ही उसको नहाना होता है, 2:30 बजे ठंडा पानी होता है तो नल खोल देती है ताकि कुछ देर में गर्म पानी आ जाए, और उसका यह भी लक्ष्य होता है कि इसकी आवाज से दूसरी बहनें भी उठ जाएं। 2 लक्ष्य होते हैं उसके। तो 2:30 बजे सब तो नहीं उठ सकते। उसमें एक बहन है जो सारा दिन बहुत काम करती है, उसको दिन में भी रेस्ट नहीं होता, तो वो उसके लिए विशेष शुभ भावना रखती है कि ये भी उठे, तो हिलाती है, कुछ करती है, उसके खाट के पास जाके पैरों की आवाज करती है, पानी भी इसी लग से खोलती है नल का के आवाज से उठे। फिर एक हंसी की बात उसने सुनाई कि जब वो नहीं उठती और 4 बज जाते हैं तो बहन जी जाके उसकी खाट के पास खड़ी हो जाती है और सोई हुई पे दृष्टि देती है बहुत देर तक कि ये उठ जाए, फिर भी वो नहीं उठती। और उसने भी नियम बनाया हुआ कि जब वो उसे देख लेती है ना ये खड़ी, तो और रजाई डाल के अच्छी तरह सो जाती है उसको चिढ़ाने के लिए। तो उसने कहा कि हमारे नीचे ही वातावरण अच्छा नहीं, पावरफुल नहीं, तो कैसे वाइब्रेशन जाएंगे बाहर चारों ओर। तो ऐसी शुभ भावनाएं भी एक दूसरे के लिए रहती है। उनकी क्या रहती है जो सोए हैं, उनकी रहती है उठती तो 2:30 बजे लेकिन बस ना धो के बैठती है और नींद ही आती रहती है इससे, तो अच्छा हम सो तो लेते हैं ये न योग करती न सोती, बीच में रह जाती है, उससे अच्छे तो हम कि कम से कम एक काम तो कर लेते हैं। तो संगठन में जब हम एक साथ रहते हैं तो हमारे इंप्रेशन एक दूसरे पर भिन्न भिन्न तरह के पड़े रहते हैं। इस सब के बावजूद भी हमें किसी का कुछ भी इस तरह का अपने चित्त में रख नहीं लेना चाहिए, ये हमारे अपने कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। तब हमारे बोल अच्छे रहेंगे। बोल पर बाबा की बहुत मूल्यां चल चुकी है, आपको पता है 2-4-5-7 साल पहले से बाबा विशेष रूप से विशेष ग्रुप्स को बोल तुम्हारे कैसे हो, ये विशेष जो मंथली मैसेज आते थे उनमें भी स्ट्रिक्टली संदेश देते थे कि तुम्हारे बोल ऐसे हो और बाबा इसका चार्ट लेगा 3 मास का 6 मास का। लेकिन बोल तब तक नहीं बदलते जब तक भावनाएं न बदले। समझ लिया हो ये व्यक्ति बहुत खराब है, ये तो ऐसा ही करता है, ये विरोधी है, ये डिस्टर्ब करना चाहता है, इसने फलानी जगह ऐसा किया है हमसे, फिर भी ऐसा करेगा, तो बोल कभी भी ठीक नहीं हो सकते। इसलिए बोल ठीक करने के लिए अपनी भावनाओं को ठीक करना बहुत आवश्यक है। एक ये बात, दूसरी संगठन के लिए ये बात इम्पोर्टेंट है, जैसे हिंदी में एक कहावत है ना, बहती गंगा में हाथ धो लो। सुनिए कहावत, गंगा वालों ने सुनी होगी, हिंदी वालों ने, बहती गंगा में हाथ धो लो। तो हमारे यहाँ भी गंगा बह रही है बहुत जबरदस्त इस समय, कौन सी, ज्ञान की तो बह ही रही है, हम एक दूसरी गंगा की बात कर रहे हैं, सेवाओं के द्वारा भाग्य बनाने की, ठीक है ना। सेवाएं हमारे द्वार पर आ गई हैं, भाग्य हमारे हाथ में आ गया है। बाहर जब आप रहते हैं, रहते थे, तो थोड़ी थोड़ी सेवाओं के लिए कितना इंतजार करना पड़ता था, अवसर देखना पड़ता था, कहीं घर से छुट्टी नहीं थी, कहीं नौकरियों से छुट्टी नहीं थी, किसी को बंधन था। अब जैसे सेवा के द्वारा भाग बनाने की एक सीजन शुरू हो गई हम सब के लिए, तो अपनी सेवाओं के द्वारा अपना अच्छा भाग बना लेना ये भी बहुत आवश्यक है। और हमें यही सोचना चाहिए कि हम एक एक दूसरों के लिए प्रेरक हैं। और क्योंकि बहुत बड़ा काम चल रहा है, इसमें आप जानते हैं दोनों बातें हो सकती हैं, कि एक व्यक्ति अगर अपने कार्यों को ठीक से नहीं करता तो दूसरे भी ढीले हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि नदी बहती जा रही है तो जो ढीला है वो ढीला रह जाए, उसे छोड़ के लोग आगे निकल जाएं, उसकी केयर न करें, क्योंकि यज्ञ को तो एक वरदान है कि ये सदा ही चलता आया है और चलता रहेगा, सफल होता आया है और सफल होता रहेगा। इसलिए हमें अपने को प्रेरक समझते हुए, मास्टर रचयिता, पूर्वज, इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी सेवाएं बहुत अच्छी हों। और बाबा ने एक स्लोगन दिया हुआ है सेवाओं के लिए, सेवाओं में अगर कंप्लेंट निकलती रहे तो सेवाओं का संपूर्ण फल नहीं मिलता। बहुत लोग हैं, हम अपने यहाँ देखते हैं किचन में, यहाँ भी वहां भी, कि वो ऐसे काम कर रहे हैं कि उनका पता भी नहीं किसी को कि ये भी काम कर रहे हैं क्या, कुछ शायद दूसरे लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये फ्री होंगे, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन इतना एक्यूरेट कर रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता कि कहीं गड़बड़ हो तो पता चले ना। लेकिन गड़बड़ हो नहीं रही तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। इस गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा है, इसको गुप्त सेवा कहा जाता है कि हम सेवा कर रहे हैं और अपनी इतनी एक्यूरेट कर रहे हैं कि किसी को देखने की, सोचने की, कहने की कुछ जरूरत नहीं पड़ रही है। यह हमारी सेवाओं की सफलता का एक बहुत सुंदर स्वरूप है। इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये सेवाएं हमें योग्यता देके जाती हैं। आपने अभी अभी बाबा की मुरली में सुना होगा, बहुत ही विचार करने का एक महावाक्य था, बड़ा सिंपल, हमारे लिए कोई गहन नहीं, कि इस समय तुम्हारे ज्ञान रतन भविष्य में क्या बन जाएंगे, ज्ञान धन, धन स्थूल धन, जिसने जितने ज्ञान रतन इस समय इकट्ठे किए भविष्य में उसको उतना ही धन प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही जिसने यहाँ ईश्वरीय शक्तियां जितनी प्राप्त कर ली, जन्म जन्म भविष्य में उसको मन और तन दोनों शक्तिशाली होने का अनुभव होगा। इस समय सेवाएं हम कर रहे हैं और यही सेवाएं कंटिन्यू हो जाएंगी हमारे जीवन में योग्यताओं के रूप में, जन्म जन्म साथ चलेंगी, हमारे योग्यताएं देकर जाएंगी हमारी सेवाएं। तो सेवाओं का महत्व इस दृष्टि से बहुत बड़ा है कि ये हमें गिफ्ट में, वरदान में योग्यताएं दे रही हैं। इस स्वरूप को ख्याल में रख के हमें अपनी सेवाएं करनी चाहिए। हम राजा बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आज या कल बाबा की मुरली में था, आज ही था शायद, कि तुम्हें नशा होना चाहिए, तुम राजाओं के राजा बनते हो। तो राजाओं के राजा बन रहे हैं और राजा में क्या क्वालिटी होती है, इस पर अगर आप चिंतन करें और वही क्वालिटी हम में होनी चाहिए तो बहुत अच्छा चिंतन हो के बहुत अच्छी बातें हमारे सामने आ जाएंगी। सत्ययुग में राजा को मंत्री की जरूरत नहीं पड़ती। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि तो समस्या नहीं तो मंत्री क्या करेगा, राजा को भी कुछ नहीं करना है ज्यादा, समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कुछ करना कराना नहीं जो मंत्री की जरूरत पड़े। लेकिन राजा स्वयं में इतना योग्य है कि उसे किसी की मंत्रणा की जरूरत नहीं पड़ रही है। द्वापर युग के बाद भी राजा को एक ही तो मंत्री होता था, राज तो बहुत बड़ा था, तब भी, तब तो समस्याएं भी शुरू हो गई थी, युद्ध भी शुरू हो गए थे, पर मंत्री एक ही था क्योंकि राजा स्वयं में बहुत योग्य और समर्थ था। हम भी आत्माएं अपने को ऐसा योग्य बनाएं सेवाओं में कि किसी को कुछ कहने सुनने सोचने की आवश्यकता न पड़े, ये राजा ही क्वालिफिकेशन हो जाएगी हमारे पास। तो इस तरह बोल और सेवाओं के द्वारा योग्यताएं प्राप्त कर लेना, इसकी बहुत आवश्यकता। कल हमारे पास जानकी दादी आई, वहां बहुत देर बैठ गई, किचन में आई, क्लास के बाद क्लास कराया, किचन में आई, ऐसे ही नाश्ता करके टोली देने और चर्चाएं जो शुरू हुई तो घंटा सवा घंटा वहीं बैठी रही। मैं लोगों को रात को बता रहा था कि जानकी दादी, आप सब तो इस बात को बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि जानकी दादी हमारे यज्ञ में एक सैंपल है। किस चीज का सैंपल? अब वो जहां है वो तो आप जानते हैं, उनको सम्मान भी प्राप्त है, स्थिति भी प्राप्त है, अब का तो आप देखते हैं और जानते हैं, केवल वही आप जानते होंगे। शुरू में वो किचन में होती थी, पेशेंट का खाना बनाती थी, शौक था बहुत ज्ञान और योग का, मनन करने की इच्छा थी, आता कुछ नहीं था, बिना पढ़ी लिखी माता, आप कल्पना करो एक बिना पढ़ी लिखी माता और विश्व की स्टेज पर पहुंच जाए, कैसे पहुंची होगी, बिना पढ़ी लिखी, जिसको हिंदी लिखनी बोलनी भी नहीं आती थी, बोलनी भी नहीं, जिनका किसी कोई महत्व ही नहीं था, समाज में भी कोई नहीं जानता था, वो आज वर्ल्ड की स्टेज पर हैं। आज तो आप उन्हें जानते ही हैं कहां है वो। तो ये सब कैसे हुआ, सबसे पहली चीज ये कि जो सेवा बाबा ने दे दी उसको संपूर्ण किया, ये सबसे पहली क्वालिटी थी। ज्ञान और योग की ओर विशेष झुकाव रहा। वो सुना रही थी, देखो हम तो सवेर 2 बजे उठ जाते थे कि मुरली विश नहीं करनी है, योग के लिए 2 बजे नहीं, तब योग आदि की बात नहीं होती थी कि बाबा मुरली सुनाने आएगा, तो ऐसा नहीं हम बहाना दे दे भाई हमें तो काम है हम तो मुरली में नहीं जा सकते, तब तो स्पीकर नहीं होते थे, तो जल्दी उठ के अपना काम पूरा करके मुरली सुनने जाते थे। तो वही चीज उनमें योग्यताएं भर गई। ये भी हो सकता है मनुष्य कहे कि भाई काम है हमें तो बहुत, हम मुरली नहीं सुन सकते, बात ये भी ठीक लगती है, कुछ गलती तो नहीं लगती, हम सब करते हैं ये कि आज हमें काम है मुरली नहीं सुन सकते, लेकिन हमारी योग्यताओं में कमी आ जाती है। हाँ जी किया, हाँ जी विदेश जाने के लिए कहा, हाँ जी कर दिया, बहुत कठिनाई थी, 4 साल वो विदेश में रही, 74 से 78 तक, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह। जब वो वापिस आई तो साड़ी उन्होंने जैसी पहनी हुई थी उसे पता चलता था कि उनका जीवन 4 साल बहुत त्याग में रहा है, बहुत त्याग में, बहुत मतलब ये शब्द बोला नहीं जा सकता, पर कठिनाइयों से उन्होंने 4 साल वहां गुजारे। सेवा कुछ खास बढ़ी नहीं, प्राप्ति स्थूल जो होती है वो कुछ नहीं, नाम के बस वो विदेश में है, फिर भी ना नहीं। उन्होंने एक बार अपनी कहानी सुना दी थी विदेश के लंदन की, कि उन्होंने सोने की चारपाई कैसे कैसे बनाई, लकड़ी कहां कहां से टूटी फूटी किवाड़ उठा उठा के, और कैसे सोने का प्रबंध किया था। ठंड बहुत होती थी, तबीयत बिगड़ गई उसके कारण, लेकिन वही रहे और मेहनत की तो भगवान के दिल को जीत लिया। तो एक लंबी यात्रा पार करके आत्मा यहाँ पहुंच गई, इसमें भी त्याग भरा हुआ है बहुत। तो एक त्याग की लंबी कहानी क्रॉस करके आत्मा यहाँ पहुंची और सेवाओं के द्वारा पहुंची। सिंपल हो गया ना, छोटी सेवा करती थी, भाषण करना भी नहीं आता था, पर्सनालिटी कुछ नहीं, पढ़ी लिखी नहीं, अंग्रेजी बोलनी नहीं, हिंदी भी नहीं, तो किस आधार से आत्मा आगे निकल जाती है। जिसको लोग आज ढूंढते हैं आधार वो क्या है, और जो रियल आधार है वो क्या है, तभी मैं कहा करता हूं, मैं सोचता हूं कि वो समय जल्दी आ रहा है जबकि अनेक ब्राह्मण जो ज्ञान को और शिव बाबा को बाह्य रूप से देखते हैं, सेवाओं को बाह्य रूप से देखते हैं, ज्ञान सेवा और बाबा तीनों को जो बाह्य रूप से देखते हैं, समझते हैं ना आप इस भाषा को, वो थोड़े ही दिन में कहेंगे कि हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। ब्राह्मण, ब्राह्मणों की बात हम कर रहे हैं, कि तेरा कार्य करने का ढंग ऐसा निराला है कि उसे तू ही जाने और कोई नहीं। आत्माओं को बनाने की तेरी विधि बिल्कुल अनुपम है, उसको तेरे सिवाय कोई नहीं जान सकता, ये अनेक ब्राह्मणों के दिल की आवाज होगी ऐसा दिखता है। तो हम सब इस रियलिटी को पहचान कर अपने अंदर योग्यताएं भरें। हमारे सामने एक बाह्य स्वरूप है यज्ञ का और एक रियल स्वरूप है स्थिति का, पुरुषार्थ का। अभी अभी हम सब ने मुरली सुनी है संडे को, याद है, कामनाओं पर बहुत गहन मुरली है। उस इन सब बातों पे हमें विचार करके अपने विचार बनाने चाहिए। मनुष्य क्या है, अपने विचार बनाता है बाह्य दुनिया को देखकर, बनाते हैं ना ऐसे प्राय हम सब में से मनुष्य, हम सब अपने विचार बाह्य दुनिया को देखकर बनाते हैं, पर वो रियल नहीं होते। हमें अपने विचार बनाने चाहिए बाबा की मुरलियों के आधार से, जो वो कह रहा है वो रियल चीजें हैं, जो हमें बाह्य संसार में दिख रही है ब्राह्मण संसार में वो रियल नहीं हो सकती सभी, उसमें मनुष्यों की बहुत सारी बातें मिक्स हो जाती हैं। तो इस तरह हमें अपनी योग्यताओं को बढ़ाना और कामनाओं की बात पर विशेष चिंतन करना है। पुण्य हम सबको अपने पुण्य जमा करने हैं और वो मैंपन से माइनस ना हो, इसका ध्यान रखना है। अब हम जरा चिंतन कर लें कि पुण्य मुख्य रूप से हम किस किस तरह जमा करते हैं। हमें लगे हमारा तो भंडार भर गया, खाता हमारा फुल हो गया, किस किस आधार से हमारा खाता बढ़ता है, पुण्य का खाता। जो खाता बाबा के पास जमा हो हमारा, वो कैसे कैसे जमा होता है? सिंपल बात है, एक सेवाओं के द्वारा, और सेवाओं में भी ठीक बोल रहे, दुआओं के द्वारा। और दुआएं किन्हें मिलती हैं? जो सुख देते हैं, जो दूसरों को राजी करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो एक सेवाओं से हमारा खाता जमा होता है। कैसे होता है वो ये सब बातें हो गई। दूसरा, सेवाओं के साथ और किससे खाता जमा? सूक्ष्म बातें भी सोचनी और मोटी भी। योग से, हमारा योग से खाता जमा होता है। और आगे चलो, हैं? धारणा में क्या क्या? सहयोग देने से हमारा खाता जमा होता है, ठीक बात। और हैं? नहीं, खाता जमा। दूसरे को इस तरह आप सोचे, दूसरे को उमंग उत्साह दिलाने से खाता जमा होता है। होता है ना, वे ढीले ढाले चल रहे हो, हम उन्हें उमंग उत्साह दिला के आगे बढ़ा दें तो हमारा पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। और शुभ भावना और शुभ कामनाओं से, और इसमें दूसरा जोर दे, ज्ञान के चिंतन से। और किसी को स्नेह देने से, ताकि उसमें खिंचाव हो जाए, वो इस परिवार में जुट जाए, इससे भी हमारा पुण्य जमा होता है। और दुनिया में कैसे पुण्य जमा होते हैं? दान करने से तो हमारा पुण्य, दूसरों को ज्ञान देने से, पुरुषार्थ में मदद करने से जमा हो जाता है। और हाँ, दुआएं हो गई। और सोचो, जो भी हम व्यक्तिगत रूप से सेवा कर रहे हैं, हर एक की अलग अलग सेवा है, उस सेवा में भी हमारा खाता जमा होता जाए। धन से भी हमारा खाता जमा होता है, जो यज्ञ में है, बोलो हैं? मौन से, हाँ हम धन की बात कर रहे हैं, धन की हम बचत करते हो, जो साधन हमारे पास है उनका सदुपयोग करते हो, और माइनस होगा वेस्ट कर देते हो, उसका दुरुपयोग कर लेते हो। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म गति है कि मान लो हमने चाय ली, गिलास भर लिया, आधा पिया, आधा गिरा दिया। हमारे लिए कॉमन है, ड्रम के ड्रम भरे जा रहे, चाय भरे रखे, हमने जरा सी गिरा दी तो क्या फर्क पड़ता है? हैं? वो माइनस में हो जाएगा ना। और हम और छोटी छोटी चीजें भी होती हैं संगठन में, हम लोगों को शुरू से सिखाई गई थी ये बातें कि तुम्हारे कारण दूसरों को संकल्प चलते हैं तो खाता माइनस होता है। बहुतों को आदत होती है, गिलास चाय पी रहे, मैं रख दिया, ये पता नहीं कहाँ रख रहे हैं, बस बात कर रहे हैं और वहीं रख दिया, ये पता नहीं कहाँ रखा, और आगे बढ़ गए। देखते कईयों को कि ऐसा करते रहते हैं। तो वहां से दूसरा गुजर रहा था, चाय गिलास को हाथ लगा, उसकी चाय गिरी उसके कपड़ों पर, वहां पानी भी नहीं है, अब क्या करें? भागेंगे बेचारे के, जल्दी धो लो नहीं तो दाग, ठंडी चाय है, उतरेंगे नहीं अब। ऐसा भी होता रहता है। तो इन चीजों का भी हमारे खाते पर असर आता है, मानते हैं ना सभी, आता है। और भी ऐसी कुछ चीजें जिनको हमारे करने से यज्ञ में इस तरह का स्थूल अलबेलापन फैले, स्थूल अलबेलापन, उससे भी हमारे खाते। तो शिव बाबा में हम ये बात स्पष्ट देखते हैं कि दोनों ही बाप दादा जब मिलते हैं तो ऐसे बैठते हैं जैसे वो किसी के बारे में और कुछ भी नहीं जानते। देखते होंगे ना आप, कैसे भोला नाथ बैठा होता, कुछ पता नहीं इसे, बैठा रहता ना ऐसे, और जबकि एक एक चीज जानता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हम भी नहीं जानते अपने बारे में वो जानता है। इसके बाद भी कोई रिएक्शन नहीं, ये बाप समान स्थिति हमें प्राप्त करनी है ना, ऐसी करनी है ना। तो सब कुछ जानते हुए भी भावनाओं में कोई अंतर नहीं है बाबा की, इसलिए वो भगवान है। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, सर्वोच्च, यहीं तक हमें पहुंचना है। तो मैंपन को हम अपने अंदर से निकालते चले। सेवाओं में कहां कहां आ जाता है मैंपन, बिल्कुल प्रैक्टिकल जो आ जाता है वो बताएं। बोलो, इधर को आवाज आ जाए। राजू क्या आ रही है आवाज, डॉक्टर साहब बैठे क्या? अच्छा, क्या आवाज आई भाई है? नहीं नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे अंत में होगी या बीच में होगी, हम ये पूछ रहे मैं कहाँ कहाँ आ जाता है। हाँ, हमारी अनुपस्थिति में ये काम होगा ही नहीं। बहुत अच्छी बात बताई आपने, ये मैंपन का बहुत ही प्रत्यक्ष स्वरूप होता है और इससे आत्मा का खाता माइनस होने लगता है। ठीक है, लिखते जाए, एक काम आएंगे आपको कहीं क्लास कराना पड़े। बोलो, ऐसी प्रैक्टिकल बात सुनाए आप कि मैं तो जाता हूं, कर लो अगर तुम्हें करना हो तो। कह देते हैं ना सब गुस्से में, देखेंगे कैसे करेंगे तुम। ये भी मैंपन, ये मोटे स्वरूप भी जो मैंपन के आते हैं उनकी भी हमें जानकारी रहनी चाहिए और सूक्ष्म की भी रहनी चाहिए। और पहले मोटे मोटे निकाल लें। हाँ, मैं ही कर सकता हूं, औरों के बस का ही नहीं है, है? हाँ, वो सूक्ष्म, अभी हम मोटे पे आ जाए जो कर्म क्षेत्र में हमारे अंदर आती है। हाँ, हम दिन रात काम करते हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं, बिल्कुल दूसरा रूप हो गया मैंपन का। ऐसा नहीं लगेगा कि मैंपन है, पर कैसा मैंपन है इसमें कि हम दिन रात सेवा कर रहे, उनकी तो पूछ हो रही जिन जो कुछ नहीं कर रहे, स्टेज पे आगे पीछे रहते हैं। तो ये संकल्प गलत हो गया, मैंपन से जुड़ा हुआ हो गया, आगे पीछे इस सबसे नहीं होते हैं। बाबा ने तो कह दिया ना साफ ही कि जब फाइनल रिजल्ट आउट होगा तो वो कुछ और होगा, वो नहीं होगा जो यहाँ दिखाई दे रहा है, वो कुछ और होगा। और बताओ कहाँ मैंपन आता है? हाँ, इसमें इंचार्जपन में तो बहुत मैंपन की गुंजाइश है। इसका अर्थ नहीं कि आपको इंचार्ज नहीं बनना, लेकिन इंचार्ज तो बनाया जाता है किसी को भी कार्य को ठीक ढंग से चलाने के लिए। अगर इंचार्ज बनने के बाद किसी में नशा आ जाए कार्य का, तो वो तो पूरी लौकिकता हो गई। और कोई अपने को ऑफिसर ही समझ ले, इधर भी ऑफिसर समझ लेते ना कहीं, बाकी सब हमारे नीचे काम करने वाले और हम मालिक, कोई अपने को मालिक समझ लेते हैं, कोई अपने को ऑफिसर समझ लेते हैं, तो इससे मैंपन ज्यादा बढ़ जाता है। और बाबा ने एक सीधा सा हमें एटीट्यूड दे दिया, एक दृष्टि दे दी कि ये तो परिवार है, यहाँ कोई ऑफिसर है ही नहीं। और ऑफिसर का नशा मैं सोचता हूँ किसी किसी को रहता है, मैं सोचता हूँ कि इनको ऑफिसर होने का कितना नशा है, इंचार्ज होने का कितना नशा। अगर इनको कहीं भगवान का बच्चा, भुवनहार विश्व महाराजन, फरिश्ता, विश्व को बदलने वाला पूर्वज, ये नशा हो जाए तो क्या हो जाए। और उसकी भेंट में ऑफिसर क्या होता है? आज आप देखिए, एक व्यक्ति गांव का एमएलए चुन लिया गया, कल उसको मिनिस्टर बना दिया गया। कुछ नहीं उसको आता, थोड़ा सा पढ़ा लिखा बस, सरपंच बना, जरा नेतागिरी करने लगा और नेताजी बन के मिनिस्टर बन गए। और उसके नीचे काम कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर्स, हाईली एजुकेटेड, जो मोस्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, वो उसके नीचे काम कर रहे हैं। तो नशा किसको ज्यादा होगा, ऑफिसर को या नेता को? नेता को होगा ना। मैं ये देखता हूँ रोज कि देखो, छोटे छोटे आदमी नेता बन जाते हैं, छोटे छोटे जिनको कुछ भी नहीं आता, कुर्सी पे बैठना भी नहीं आता, कभी कभी तो ऐसे बन जाते हैं। ये नशा है ना संसार का भी, प्रैक्टिकल बात है ये। जैसे से वो SDM मिलने आया, वो उसके वहां का रहा SDM रहा था जहां से उसने चुनाव जीता था, तो ये बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा होके हाथ जोड़े उसको और उसका उपकार माना। लोगों ने, पत्रकार ने पूछा भाई क्यों, कहा भाई मेरी लड़की की शादी थी, SDM ने मुझे एक बोरी चीनी दी थी, तो उसका अब तक उपकार मान रहा है वो। तो हमें अगर रियल नशा रखना है जिसमें बहुत सुख है, बाबा ने अभी अभी कहा कि बाबा तुमको बहुत ही अच्छे शब्द थे कल परसों की मुरली में, बहुत इतना ज्यादा सुख देता है, हाँ देवताओं से भी बड़ा सुख इस समय तुम्हें बाबा देता है, देवताएं जीवन से भी बड़ा सुख। तो हमारा ये छोटा नशा यहाँ न हो कि भाई मैं इंचार्ज बन गया हूँ, उसका हमें नशा हो जाए, वो नशा हमारी रियल पोजीशन की भेंट में कुछ भी नहीं है। इसीलिए माइनस होता है ना, कि वो नशा एक्चुअली हमारी असली स्थिति की भेंट में जीरो है। ऑफिसर्स का नशा, इंचार्ज का नशा, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर नशा हो तो हमें ये होना हम कितने महान हैं, किसके साथ हैं, किससे पढ़ रहे हैं, क्या बना रहा है वो हमें, इस नशे की भेंट में ये सब नशे कुछ नहीं है। तो कहीं भी इस तरह का नशा हमारे कार्य व्यवहार में अगर आता है तो हमारा व्यवहार बदल जाता है, पुण्य का खाता कट रहा है, उसकी प्रैक्टिकल निशानी यही होगी कि सेवा करते हुए मन उसको टेंशन रहेगी, खुशी नहीं। मन निर्संकल्प होने की बजाय संकल्पों की अति में रहेगा सदा ही, तो जहां संकल्पों की अति है वहां खाता माइनस में है। तो इस तरह हमें चेक कर लेना चाहिए, सुख सब मैं भी बहुत होता है, मेरा नाम बदनाम न हो जाए, मुझे लोग ऐसा न कहने लगे इसने मुझे ये क्यों कहा, ये भी मैपन में आता है, मेरे बिना पूछे ये काम क्यों किया गया। लौकिक में इसी तरह आता है, मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, मेरा नाम समाज में बदनाम हो गया है, ये मैं और मेरेपन से जुड़े हुए अनेक संकल्प मनुष्य को आते हैं। और इससे मोटी चीज तो हम जानते ही हैं जो बाबा ने कहा, करके उसका वर्णन करना, करके बार बार उसका चिंतन करना, उसकी कॉन्शियस में रहना कि मैंने ये किया, और इससे भी सूक्ष्म के मेरी ये योग्यताएं हैं, मेरे अंदर ये खूबियां हैं, इन सूक्ष्मताओं से भी हम धीरे धीरे अपने को मुक्त करते चले तो हमारा जीवन बहुत डिवाइन होता जाएगा और हमारा खाता अधिक से अधिक जमा होगा। अब पुरुषार्थ हमारा रहेगा अगली बार के लिए, एक स्वमान पर हम चिंतन करेंगे और अभ्यास करेंगे कि मैं इस प्रकृति का मालिक हूं, प्रकृति देह और देह में कर्मेंद्रियां सूक्ष्म मन बुद्धि सहित सबका मालिक हूं, इस पर ही लिखना है, चिंतन करना है और इसका ही अभ्यास। ये भी एक नशा है, नशे में आ जाए ये बात, सोच लें आप अच्छी तरह, नशे में आ जाए ये बात कि मैं मालिक हूं इस प्रकृति का, इस देह का। तो जब ये बात नशे में आ जाएगी तो कर्म इंद्रियां सहज कंट्रोल्ड, बल्कि शीतल हो जाएंगी, हमें कंट्रोल करना भी नहीं पड़ेगा, और अंदर में कर्म इंद्रियों में जो भी उत्तेजना है उसमें भी कर्म इंद्रियों में सबसे ज्यादा उत्तेजना किसकी होती है, काम विकार की, काम की उत्तेजना कर्म इंद्रियों को उत्तेजित करती है सभी को, उस वो शीतल हो जाएगी और हम अपने में बहुत ज्यादा सुख का अनुभव करेंगे। तो एक ये अभ्यास करना रोज कई बार एक हफ्ते तक योग अभ्यास के लिए, हम प्रकृति के मालिक हैं तो वही अभ्यास फिर से करेंगे, बाबा से प्योर वाइब्रेशंस लेकर सारी प्रकृति को देना, अपने शरीर को देना, प्रकृति के साथ जोड़ देते हैं, बाबा से प्योर वाइब्रेशंस लेकर अपने शरीर को देना, बस इन दो तीन चीजों का अभ्यास और चिंतन हम करेंगे और फिर से वही लक्ष्य रिवाइज कर ले कि इस वर्ष हमें स्लोगन लिख लें, सभी अपने पास लिख के रख लें कि जो कुछ हम इस जीवन में करना चाहते हैं, इस जीवन का अर्थ है कल्प कल्प के लिए, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के लिए, केवल एक बार जो कुछ होता है वो हम जितना अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं वो इस साल के अंत तक हमें कर लेना है, ऐसे लक्ष्य को अपने अंदर रिवाइज रखते हुए इन बातों पर कंसंट्रेट करेंगे। बाबा के आने के दिन फिर से आ गए हैं और फिर से वो बात भूल नहीं जानी कि जिस जो दिन बाबा के आने का है उस दिन बहुत अच्छी अवस्था सवेरे से रखनी है, मौन के साथ, अंतर्मुखता के साथ, अच्छे चिंतन के साथ अपने को उसी नशे में ले जाके रखना है। ओम शांति।